सूरत नूर शुरू होती है आयत नंबर 1 से 10 तक जिना के सजा के ताल्लुक से फरमाया। यहाँ पे बहुत ही अहम अहकाम हैं। इस सूरे को गौर से सुनिए, इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें जो आज माशरे में हो रही हैं उस ताल्लुक से बहुत ही अहम अहम सूरा है ये। ये मदनी सूरा है, मदीने में नाजिल हुआ। चलिए इसके अहकाम इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह पाक ने क्या रखा है हमारे लिए इसमें दर्स नसीहत। इस सूरे में मुख्तसर सा इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रही कि ये सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, मुकर्रर कर दी है ये बात। ये वो सूरत है जिस जो हमने नाजिल फरमाई और मुकर्रर कर दी है, जिसमें हमने खुली आयतें अहकाम उतारी है। देखिए मैं बताई ना अभी आपको, इसमें तमाम अहकाम बहुत सारा, अल्लाह ताला खुद बता रही कि मैंने इसमें बहुत सारे अहकाम वाली आयतें उतारी ताकि तुम याद रखो। असल बात याद रखने की है बहनों, इसीलिए तो ये कुरान है, बार बार पढ़ें और याद रखें। क्या है आगे आयत नंबर 2 में, अल्लाह यानी 1 से 10 तक तो पूरा जिना के ताल्लुक से अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिनाकार मर्द व औरत दोनों को 100 100 कोड़े लगाओ। ये 100 100 कोड़े किसके लिए है? जो गैर शादीशुदा है, शादीशुदा औरत के लिए, शादीशुदा मर्द जो जिना करता है उसके लिए रजम की सजा है, यानी मौत की सजा है उसको, जो जिना करता शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत। और जो जिनाकार गैर शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा औरत होते हैं तो उनके लिए 100 कोड़े हैं। इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। अब होता ना ऐसा, अम्मा 100 कोड़े मारना, अब्बा कैसा होता? सुभान अल्लाह, अल्लाह अरहमर रहीमीन है, आप में नहीं है उतने ज्यादा। अल्लाह को मालूम है कौन सा कानून कब कैसे देना है। रजम की सजा जब देखते हैं कि पत्थर मारकर हलाक किया जा रहा, बोलते अल्लाह ऐसा होता, अम्मा मेरे को तो रहम आता, वो देख नहीं सकती। नऊज बिल्ला, नहीं, अल्लाह ताला बोल रही उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए, यानी बीच में सजा दो उनको, लोगों के बीच में, ताकि दूसरा कोई गुनाह ना करे। बहन अल्लाह ताला जो भी हमें अहकामात दे रहे हैं, जो कवानीन अल्लाह सुबहानहु ताला के है, वो हमारा खालिक है, उसको मालूम है हमको क्या देना है। वो अरहमर राहिमीन है, ये सजा दे रहा है, ये सजा उनके लिए दुनिया में तलाफी हो जाती है। सुभान अल्लाह, दुनिया में सजा उनकी तलाफी हो जाती है। ऐसे कई वाकयात हैं, वक्त कम है, मैं बता नहीं पाऊंगी आपको। इंशाल्लाह फिर कभी इसके ऊपर हम दर्स रखेंगे टॉपिक पे इंशाल्लाह, जब बताऊंगी। लेकिन अभी मैं मुख्तसर से आपको बता दूं कि बस मेरा रब सही है हमारे ताल्लुक से फैसले करने वाला, और अरहमर राहिमीन भी वही है। रहम के साथ उसने ये सजाएं तजवीज की ताकि बंदा उसकी तरफ पलटे। ये सजा कुछ भी नहीं है बहनों जो दी जाती है दुनिया में, रजम की सजा। रजम यानी पत्थर मार के जो कत्ल किया जाता है उस औरत को या उस मर्द को जिसने जिना किया। तो सुभान अल्लाह, ये जो सजा है अल्लाह ताला बता रही कि इस सजा के जरिए से फिर दूसरी तमाम इंसानियत को अल्लाह महफूज करते हैं। तो देखिए आज सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उनको नेक तौफीक दे जो माशाल्लाह ये कवानीन को अपना रहे हैं। आज भी ये कवानीन दुनिया में मौजूद है, जिस कंट्री में भी मौजूद है वहां देखिए आप जिना का रेशो एकदम 0 के बराबर है। मैं तो कहूंगी दूसरे ममालिक के मुकाबले में आप देखिए सऊदी अरब, सुभान अल्लाह कि कितना कम है वहां पर रेशो जिना का। क्यों? क्योंकि वो रजम की सजा वहां पर होती है, और गैर शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा औरत होती है तो उसे कोड़े लगाए जाते हैं सबके सामने। तो क्या होता है ये कि वो लोग हैबत खा जाते हैं और दूसरा कोई गुनाह नहीं करता। आज देखिए यहाँ पे आपको पता है इंडिया में हमारे, अल्लाह ताला इस्लामी कानून ला दे मालिक। क्यों? क्योंकि सबकी सबकी गैर मुस्लिम की हर हर बेटी की इज्जत महफूज है इसमें, जैसे वहां महफूज है। यानी मुसलमान हो या काफिर हो या कौन सी भी मजहब की हो, हर माँ बेटी की इज्जत महफूज है इस्लामी कवानीन में। वहां का रेशो देखिए, वहां पर 0 है तो यहाँ पर, यानी मतलब ये कि सालों में जुर्म नहीं होता, सालों में ये जुर्म नहीं होता जिना का। यहाँ पर देखिए हर सेकंड में रेप होता, हर सेकंड में, सेकंड मतलब सेकंड सेकंड में एक रेप होता है। यहाँ रिपोर्ट है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही। बहरहाल देखिए अल्लाह ताला के कानून में कैसी अल्लाह ने जिंदगी रखी है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जानी मर्द बजे जानिया या मुशरिका औरत के, और कोई इससे निकाह नहीं करता। यानी होता भी ये ना कि जिनाकार औरत भी जिनाकार मर्द या जिनाकार मुशरिक मर्द से ही निकाह करेगी। यानी वो जिनाकार और जानी और मुशरिक जो है, वो मर्द औरत एक दूसरे के लिए बने हैं, वो लोग एक दूसरे से शादी करते हैं वो। और होता भी यही है ना, आप देखें होंगे रिश्ते देखने जा रहे हैं तो दीनदार लोग को देखते हैं, फैशन परस्त लोग फैशन परस्त लोग को देखते हैं। یعنی ہر ایک اپنا اپنا سٹینڈرڈ رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اللہ ہی نے خود حرام کر دیا ہے, ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر جار گواہ نہ پیش کر سکیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہیں 80 کوڑے لگاؤ. دیکھیے یہ بھی ہے, کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہے اور وہ پروف نہیں کر سکا ان کا گناہ, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس پر 80 کوڑے لگانے کا حکم ہے. اور کبھی بھی ان کی گواہی دوبارہ قبول نہ کرو, اور یہ فاسق لوگ ہیں. ہاں جو لوگ توبہ کے بعد اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کی ذات کے کوئی نہ ہو, تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کے. اب دیکھیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زنا کی تہمت کوئی لگا رہا ہے, شوہر بیوی ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے, فرض سمجھیے کہ نہیں میرا شوہر بدکاری کرا ہے, یا عورت بول رہی میرا شوہر کرا, شوہر بول رہا ہے کہ میری عورت بدکاری کری, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے, گواہ پیش نہیں کر سک رہے ہم, تو بولے ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ قسم کھانا ہے. 4 مرتبہ لعان کہتے ہیں, لعان کا مسئلہ کہ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہنا کہ وہ سچوں میں سے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. یہ بول دیا تو پھر گویا بات ثابت ہو گئی. اور اس طرح سے عورت بھی کہے, عورت کی بھی سزا اس وقت دور ہو سکتی ہے جب وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے اور کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بول رہا ہے, میں پاکیزہ لوگوں میں سے ہوں, وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولنے والی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اس طریقے سے قسم کھانے کا حکم ہے. کب؟ جب گواہ نہ پائیں. آگے آیت نمبر 11 سے, یہ تو زنا کے تعلق سے سزائیں تھیں, آگے آیت نمبر 11 سے 26 تک اللہ تعالیٰ بہتان کا واقعہ, ایک واقعہ ہے سنیں اس کو بغور انشاءاللہ. یہ ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے ہے کہ واقع عفق کہا جاتا ہے. پہلے میں آپ کو واقعہ بتاؤں, اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 26 تک آیت کا ترجمہ میں آپ کو پڑھوں گی تو بہت اچھا لگے گا. سبحان اللہ, یہ آیتیں یعنی 11 سے 26 تک یہ ہماری ماں کے لیے اتری بہنوں, الحمدللہ ان پر ایک بدنامی کا دھبا لگائے تھے مشرکین اور منافقین, تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے, یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی آسمانوں سے آئی. اللہ پاک نے 16 آیتیں اس ضمن میں نازل کی ہیں. وہ آیتوں کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے, آیت نمبر 11 سے 26 تک پڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ عفق کے بارے میں بتا دوں. وہ کیا تھا واقعہ؟ ہوا یہ تھا بہنوں کہ غزوات ہوتے تھے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے, غزوہ بنی مصطلق ہوا تھا. وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پہ رکے, وہ لوگ مدینے کے قریب ایک مقام پہ رکے, قافلے پیدل پیدل سفر کرتے تھے نا, تو تھک گئے تو رک کے تھوڑا بہت ریسٹ کرتے تھے, اس کے بعد پھر نکلتے تھے. تو ریسٹ کرنے کے لیے رکے تھے, اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے یعنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جاتی ہیں, اور وہاں پر ان کا ہار گم ہو جاتا, تو وہ ہار ڈھونڈنے میں رہتی, اور ان کا جو مطلب جو پالکی میں بیٹھتی تھی, تو کیا ہوتا تھا سفر کیسے ہوتے تھے, وہ پالکی میں اور عورتیں بیٹھتی تھیں, اور اس پالکی کو اونٹوں پر گھوڑوں پر رکھ دیا جاتا تھا اور اونٹ چلتا تھا. تو کچھ صحابہ مطلب جو پالکی اٹھانے والے لوگ تھے وہ پالکی اٹھائے اور رکھ دیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بہت ہی دبلی پتلی تھی تو ان کو سمجھ بھی نہیں آیا, انہوں ہے ہی نہیں ہے اندر, وہ لوگ اٹھائے اونٹ کے اوپر رکھ دیے اور قافلہ چل پڑا. جب یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا واپس پلٹ کر آتی ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے دور جاتی تھوڑا, پھر جب واپس پلٹ کے آتی ہیں دیکھتی کہ پوچھا تمام قافلہ چلا گیا, تو آپ کیا کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مجھے نہ پا کر پلٹ کے آئیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ کوئی نہ کوئی آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے. وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کرتی ہے, مطلب آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتی. پیچھے سے, یعنی ایک اصول یہ تھا اس زمانے میں کہ قافلے جب جاتے تو ایک شخص کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ کچھ چھوٹی ہوئی چیزیں وہ کلیکٹ کر کے لاتے تھے. اور اس وقت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ, ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ, تو وہ صحابی پیچھے سے آئے, جب دیکھے یہاں پر کوئی بیٹھی بھی ہیں, تو جب نزدیک دیکھتے تو ہے نا آپ حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے, یعنی حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے تھے نا, تو دیکھ کے پہچان لیتے, پہچان لے کے ارے اما عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹ گئی تو قافلے سے بچھڑ گئی, تو آپ کیا کرتے, بات بھی نہیں کرتے, کیا بولتے, حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول یعنی حدیث میں آیا ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, जोर से इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते पढ़ते जब आंख खोल देते, जल्दी अपना हिजाब कर लेते और सफान बिन मुअत्तर रदियल्लाहु अन्हु क्या करते, ऊंट बिठा देते। ऊंट बिठाते ही वो ऊंट के ऊपर बैठ जाती, कौन, आयशा रदियल्लाहु अन्हा, और ऊंट लेके मतलब नुकेल पकड़ के खामोश खामोश सफान रदियल्लाहु अन्हु उनको लेके जाके काफिले से मिला देते। जब काफिले की तरफ आते, आयशा रदियल्लाहु अन्हा ऊंट पर बैठी आती हैं और सफान रदियल्लाहु ऊंट की नुकेल थामे हुए लाते हैं, तो सुभान अल्लाह देखिए, कुफार मुश्रिकीन, खासकर मुनाफिक मुनाफिक लोग, यहाँ पर मुनाफिकों का बहुत किरदार था, मुनाफिकों को प्रोपोगंडे का एक बहाना मिल गया और इस खदर उस बात को उछाले। देखो क्या बात है, इन्होंने गुना बोल के रुक गए थे होंगे, वो सफान के साथ आना नऊज़ुबिल्लाह, ऐसी ऐसी बातें आयशा रदियल्लाहु अन्हा पर उड़ाए, तोहमतें लगाए, और वो तोहमतों के उसमें यानी इतनी गड़बड़ मच गई थी उस तोहमत की कि कई बाज यानी दो चार ऐसे ईमान वाले भी वो तोहमत की जद में आ गए थे। और बाद में जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान बरात नाजिल हुई तो सख्त परेशान रहे। और उस अच्छा इत्तेफाक ये हुआ कि जब वो लोग आए और अच्छा सामने कोई हिम्मत नहीं करता था बोलने की, पीछे पीछे ये बातें होती थी, तो सामने तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आए, काफिले से मिल गए, अरे कैसे छुट गए थे, ऐसे छुट गए, वो बोले सब हो गया, घरों को चले गए अपने। अब ये पीछे चेमगोइयां करने लगे थे ना मुनाफिकीन, क्या था होगा, क्यों रुके थे होंगे, उन्हों होना बोल के रुके थे, फला फला नऊज़ु बिल्लाह, बहुतान तराशियां करने लगे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम ही नहीं थी ये बात कि ऐसे इनके ताल्लुक से हो रहा है। इत्तेफाक वो बीमार पड़ जाती है तो और मौका मिल जाता मुनाफिकीन, देखो क्या बीमार पड़ गए, क्या हो गया। तो बहरहाल ये जो यानी तोहमत लगी थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पे, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रूफ करने के लिए कुछ था भी नहीं, तो बोले कि मतलब आप खामोश हो गए एकदम, अरे ये भैया कैसी बात हो गई, कैसी बात मेरी बीवी पर उठ रही। तो सुभान अल्लाह, आसमानों से अल्लाह ने आपके आपका ऐलान बरात किया, सुभान अल्लाह। बहुत ही यानी आयतें देखिए आपको समझ में आएगा, आयत नंबर 11 से 26 तक मैं तर्जमा पढ़ूंगी, क्या फरमाया अल्लाह ताला, जो लोग ये बड़ा बहतान बांध लाए ये भी तुम में से ही एक गिरोह है, तुम इसे अपने लिए बुरा ना समझो बल्कि ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है, हाँ इनमें से हर एक शख्स पर उतना गुना है जितना इसने कमाया, यानी जेमोगोइयों में जितना जो हिस्सा लिया ना तो वो उतना ही उसने कमाया बोल, और इनमें से जिसने इसके बहुत बड़े हिस्से को अंजाम दिया उसके लिए दर्दनाक अजाब है, बहुत बड़ा अजाब। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही, इसे सुनते ही मोमिन मर्दों और औरतों ने अपने हक में नेक गुमानी क्यों नहीं। देखिए क्या बोल रही, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में सुनने के बाद मोमिन मर्द और मोमिन औरतें नेक गुमानी क्यों नहीं किए, और क्यों ना कह दिया कि ये खुल्लम खुल्ला सरी बहतान है, उस पर चार गवाह क्यों नहीं लाए, वो इस पर चार गवाह क्यों नहीं लाए, और जब गवाह नहीं लाए तो ये बहतान बाज लोग यकीनन अल्लाह के नजदीक महज झूठे हैं, अल्लाह का फजल करम तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होता तो यकीनन तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे इस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता। सुभान अल्लाह, किसके फेवर में बोल रहे हैं अल्लाह ताला ये, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अब कौन कहता है भाई वुमेन्स राइट नहीं है इस्लाम में, सुभान अल्लाह, इतनी सारी आयतें नाजिल हुई, एक औरत पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने इतनी आयात नाजिल की, वो हमारी माँ थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि जबकि तुम अपनी जुबानों से नखल दर नखल कर रहे थे, यानी इनू बोले इनसे उन्हों सुने उनसे उन्हों सुने, और अपनी मुंह से वो बात निकालने लगे जिसकी तुम्हें मुतलक खबर ही ना थी, गो तुम इसे हल्की बात समझ रहे थे लेकिन अल्लाह के नजदीक वो बहुत बड़ी बात है, यानी ईमान वाले पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा बहतान बहतान है गुना, और बहतान क्या है, गुनाह अजीम है। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी लायक नहीं है, अल्लाह तू पाक है, तू बहुत बड़ा ये तो बहुत बड़ा बहतान है और तोहमत है। अल्लाह ताला बता रहे क्यों नहीं बोले ये बात अपनी जुबानों से, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है फिर कभी भी ऐसा काम ना करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह अकबर, क्या बोले, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो आइंदा ऐसी ऐसी बातें बातों में कुफार के
आवाज चली गई बाजी। हेलो
जी, हाँ,
बाजी
हाँ आ रही है। हाँ, कहाँ तक सुने सुनाई दिया?
वही कुफार के बारे में अभी जो बोल रहे थे आप, अभी जस्ट
हाँ
गए।
जस्ट गया ना, ठीक है ठीक है। तो ये देखिए अल्लाह ताला बता रहे हैं आयत नंबर 19 19, नोट करिए इसको क्योंकि ये बहुत अहम आयत है इसमें, यानी मतलब ये तो वैसे तमाम कुरान अहम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं जो नोट करवा रही हूँ आपको इस वजह से कि माशरे में जो ज्यादा पाया जा रहा है ना बहनों, उसको मैं नोट करा रही हूँ। अभी देखिए, जो लोग मुसलमान, आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाते हैं, इन लदीना युहिब्बुन अन तशिया अल फाहिशा फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, यानी जो ये आरजू रखता है कि मोमिन मुसलमानों के दरमियान फहश फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। ये वाक़े के बीच में ये आयत ला के अल्लाह ताला बता रही कि जो ये आरजू रखता है कि बेहयाई फैले, मतलब क्या है ये, मतलब क्या है, यानी ये जो बहतान लगाए, ये बुरी बात उड़ाए, तो ये बुरी बात का उड़ाना गोया, यानी अल्लाह अल्लाह ताला बता रही कि ये एक बेहयाई को फैलाने के बराबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखिए आज हमारा माशरा कितना, किस कदर बेहया है, बेहयाई के उरूज पे है, उरूज पे। या अल्लाह किसको बेहयाई बोल रही? जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। यानी इस बात को बेहयाई बोल रहे हैं कि किसी पर तोहमत लगा रहे हैं, किसी के बारे में स्टोरी बना रहे हैं, खाली बना रहे हैं, और मुंह से एक दूसरे के बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करे होंगे, ऐसा रुक गए थे होंगे, ऐसा। तो ये खाली बेहयाई की बातें करने पर अल्लाह ताला बता रहे हैं दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब दूंगा। यहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला है सुभान अल्लाह, खाली बातें मनाना नहीं, प्रैक्टिकल भी है यहाँ पे, नऊज़ु बिल्लाह, हकीकत में गुनाह कर रहे हैं और फिर उसके चर्चे भी होते हैं। नऊज़ु बिल्ला, ना सिर्फ चर्चे बल्कि बेहयाई की हद ये है कि नऊज़ु बिल्ला इसके ऊपर डिस्कशंस भी होते हैं। मुझे इंतहाई कराहत आती है जब लोग ना, हमारी बहनें ना फिल्म एक्टर्स पर तबसरे करती हैं, सुभान अल्लाह, उसकी इससे शादी हुई, वो फला हुआ करते, उसका ऐसा हाल हुआ करते, ये फला उसने से उसका स्टेटमेंट आया, उन्हें ये बोला। अरे ऐसे लानती लोगों के ऊपर आप डिस्कशन कर रही हैं नऊज़ु बिल्ला, जिसको अल्लाह ने लानती करार दिया, बेहया है वो, और बेहयाओं की हम इज्जत करें नऊज़ु बिल्ला? नहीं, बल्कि वो काबिले तस्करा ही नहीं है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसी बेहयाई फैलाने वाले दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हैं। खाली इतनी बात को बोल रहे हैं अल्लाह ताला, खाली जो मतलब मुंह मुंह दर मुंह बोल लिए थे तोहमते लगा के, अब जो हकीकत में जो बेहयाई कर रहा है और उसको फैला रहा है, तो वो कितना बड़ा अजाब का मुस्तहिक होगा। अल्लाहु अकबर। इसके बाद अल्लाह ताला बता रही, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, अगर अल्लाह का तुम पर फजल, उसकी रहमत ना होती, तो ये कि अल्लाह बड़ी शफकत व मेहरबानी करने वाला है, तो तुम पर अजाब उतर पड़ता। ईमान वालो, ईमान वालों, शैतान के कदम कदम पर ना चलो, ये शैतान तुम्हारे कदमों, ये जो शख्स शैतान के कदमों की पैरवी करेगा, वो तो बेहयाई और बुरे कामों ही का तुमको हुक्म देता रहेगा, और अल्लाह का फजल करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई भी कभी भी पाक और साफ ना होता। अल्लाह जिसे पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ये बहुत ही यानी 26 आयत तक जो आयतें हैं उसमें बीच में और एक बात भी है बहनों, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर पूरे 26 तक तो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में ही बोले हैं, लेकिन यहाँ पर यानी एक आयत बीच में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में आई है कि उनको भी ये कहा गया कि यानी नाम नहीं लिया गया लेकिन उनकी सिफात यहाँ बयान की गई। हुआ ये था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खलेरे भाई थे, तो वो भी इन लोगों की बातों में आ गए थे, ये मुनाफिकीन की बातों में आ गए थे, और चेमगोइयों में वो भी शामिल हो गए थे, यानी जो डिस्कशन से लोग कर रहे थे छुप छुप के, उसमें उन्होंने भी शामिल हो गए थे। तो नऊज़ु बिल्लाह, अब जाहिर बात है भाई, जब अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान बरात आ गया और अल्लाह ताला बोल दिए कि नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पाकबाज हैं, ये तोहमत है उन पर, तो अब जब पता चल गया तो ऑब्वियसली मतलब आया होंगे ना गुस्सा, किसको, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, अरे मेरी बेटी के ऊपर ये तोहमत लगाया था। हुआ ये था कि ये जो खलेरे भाई थे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के खाला के खालाजाद भाई, तो उनके यानी वो एक तो खराबातदार थे और दूसरे वो मिस्किन भी थे और महाजिर भी थे, हिजरत करके आए थे ना इधर मदीना, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को काफी मदद करते थे। तो कसम खा ली थी अबू बकर सिद्दीक, अरे ये शख्स ऐसा करा अपनी घर की बच्ची के लिए, तो बोले कि मैं कसम खाता हूँ मैं आइंदा से इसकी कोई मदद नहीं करूंगा। देखिए अल्लाह ताला कैसा अरहमर राहिमीन है, चूंकि वो तौबा कर लिए थे बाद में, वो सहाबी ना बाद में तौबा कर लिए थे, और भी बात सहाबी थे जो बातों में आ गए थे मुनाफिकीन के, ऐसा हुआ क्या सही भी बोल के डिस्कशन करने लगे थे, लेकिन बाद में तौबा इस्तग़फार कर लिए थे। इसीलिए तो अल्लाह ताला बार बार वरना तुम सुनते ही बोल देना था गलत है, बल्कि मोमिन लोगों के ताल्लुक से कोई बुरी खबर आती है, कोई बुरी बात आती है, तो सुनते ही कह देना चाहिए कि ये शायद गलत होगा। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला बताए कि जब वो कसम खा लिए थे, तो ये आयत उनके ताल्लुक से नाजिल हुई, आयत नंबर 22, कि तुम में से जो बुजुर्ग और कुशादगी वाले हैं उन्हें अपने खराबतदारों मिस्किनों मुहाजिरों को अल्लाह की राह में देने से कसम ना खा लेनी चाहिए। कसम मत खाओ बोले अल्लाह ताला, उनसे उनको देने से मत रुको, बल्कि माफ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे कसूर माफ कर दे? सुभान अल्लाह, जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू आ गए, बोले अल्लाह मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तुम मुझे माफ कर दे, और फौरी अपने कसम का कफारा अदा करते हैं और उस सहाबी को जो उनके साली के बेटे रहते उनको रोक देते ना देना, तो बोलते कि नहीं मैं आज से मतलब इरादा कर रहा हूँ कि मैं दूंगा जरूर उनको। अल्लाह अकबर। अब जो अल्लाह ताला बता रहे हैं आगे, यही 26 आयत जो अमाइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए नाजिल हुई थी वो क्या थी, अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि जो लोग पाक दामन भोली भाली बाईमान औरतों पर, ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो दुनिया और आखिरत में मलऊन हैं, और उनके लिए बड़ा भारी अजाब जिस दिन उनके मुकाबले में उनकी जुबानें और उनके हाथ पांव उनके अमाल की गवाही देंगे, उस दिन उन्हें अल्लाह पूरा पूरा बदला देगा इंसाफ के साथ। वो जान ले और वो जान लेंगे कि अल्लाह ही हक है और वही जाहिर करने वाला है। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए लायक हैं, खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए नहीं, गंदी जो गंदगी वाले हैं, जो बेहया हैं, बेहया औरतें बेहया मर्दों के लिए हैं, और बेहया मर्द बेहया औरतों के लिए हैं, और पाक दामन औरतें पाक दामन मर्द के लिए लायक हैं, और पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए लायक हैं। ये क्यों पढ़े अल्लाह ताला ये लोग जो तोहमतें लगाए, तो वो इंडायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आ गई ना फिर नऊज़ बिल्ला। तो अल्लाह ताला बता रही कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पाक मर्द के लिए है, नापाक मर्द ना ना पाक औरतें पाक मर्द के लिए ही है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक है, तो फिर हम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी पाकीज़ा ही है। ये भी एक मिसाल दे के बता रहे हैं अल्लाह ताला, एक नबी की बीवी अल्लाह ताला नापाक औरत को नहीं रख सकता नऊज़ बिल्ला, वो तो पाकीज़ा है सुबहान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ऐसे पाक लोगों के मुताल्लुक जो कुछ बकवास ये बोहतानबाजी कर रहे हैं वो उनसे बिल्कुल बरी हैं, ये ऐलाने बरात है, उनके लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है सुभान अल्लाह। लास्ट बात ये बताए अल्लाह ताला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि ये पाक हैं, पाक औरतें पाक मर्द के लिए हैं, और खबीस औरतें जो होती हैं वो खबीस मर्द के लिए ही हैं। बहरहाल ये थी वो आयत नंबर 11 से 26। उसके बाद आयत नंबर 27 से 34 तक अल्लाह पाक एक हयादार माशरे की तश्कील देता है, ये भी बहुत अहम है कि कैसा हयादार माशरा कैसा होता है, देखें उसके भी पॉइंट्स यहाँ पर सिंपल सिंपल है, मैं तर्जमा पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा, बस मुझे तफसीर करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, या अय्युहल लज़ीना आमनू, अब यहाँ से यानी ये बोहतान तराशी हुई, जिना के बारे में बोले, फिर बोहतान के बारे में बोले अल्लाह ताला सूरह नूर में, फिर आगे ये थर्ड चैप्टर जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें क्या है कि जिना के दरवाजे बंद कर रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पर। पहला चैप्टर में जिना जिना के बारे में था ना, अब यहाँ पर जिना के दरवाजे बंद कर रहे हैं, कैसे ईमान वालों को एक पाकिजा माशरे की तश्कील देने के लिए कह रहे हैं। क्या है वो पाकिजा माशरा, ए ईमान वालो, आयत नंबर 27 से शुरू हो रहा है 34 तक, ए ईमान वालो अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में ना जाओ जब तक कि इजाजत ना ले लो, और वहां के रहने वालों को सलाम ना कर लो। बाज लोगों की आदत रहती बगैर बोले दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो जाते, बाहर से आ रही नहीं अपना इस घर है क्या, नहीं सुभान अल्लाह, आप अगर अपने सगे मामू के घर में, सगे खाला के घर में, सगे यानी मतलब ये कि आप उनको सगे समझते सुभान अल्लाह सही है, लेकिन वहां पर महरम ना महरम का सवाल है, लेकिन हमारे पास तो वो माशरा ही नहीं है नऊज़ु बिल्लाह, हाँ इल्ला माशा अल्लाह बाज घरों में है कि इजाजत लेके आते हैं और कजिन ब्रदर्स कजिन सिस्टर से एक दूसरे से पर्दा करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सब जगह वो चीज को करने की तौफीक अता फरमाए ताकि ये अजाब हम पर से हटे। ये जो अजाब है ना बहनों, आप जो अजाब चल रहा है वो भी बेहयाई जब उरूज पे आ जाती तो ऐसे अजाब अल्लाह नाजिल करता है। تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں جب جاؤ تو اجازت لیے تک نہیں جاؤ, اور وہاں کے رہنے والوں کو جب تک سلام نہ کر لو, یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس زمن میں ایک حدیث میں آپ کو بتاتی آگے بڑھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے سختی سے منع فرمایا. بعض لوگوں کو عادت رہتی, دیکھی دروازے میں ٹھہر کے اندر جھانکتے, تو یہ جو جھانکنا ہے اس کو سختی سے منع فرمایا اور کہا کہ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ اکبر, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. کسی گھروں میں بغیر اجازت کے جھانکنا نہیں ہے. اگر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے, اگر انہوں جھانکے جھانکے بول کے آنکھ پہ مار کے آنکھ پھوڑ دیے تو گناہ نہیں ہے, بول رہے اللہ اکبر. یعنی کتنا سخت غصے میں ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ جو یہ بات بتائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اس کی سختی بتا رہے ہیں اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ہاں اگر تم کو اجازت نہ ملے تو تم لوٹ جاؤ, یعنی تین مرتبہ چار مرتبہ آپ بیل رنگ کرے, نہیں کھولے دروازہ تو پھر لوٹ جانے کا حکم ہے. اور برا بھی نہیں ماننا, آئی دروازہ بھی نہیں کھولے دیکھو گئے تو نہیں, کیا مجبوری تھی پتا نہیں, واللہ عالم. اپنی اپنا دل صاف رکھے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں, یا غزے بصر کا حکم ہے آیت نمبر 30 میں. غزے بصر یعنی نگاہوں کو نیچے رکھنا, پردہ تو کرنا ہی ہے لیکن مرد کو پہلے بولے, کیا بولے, مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. پھر مسلمان عورتوں سے کہو, آیت نمبر 20-30 میں مسلمان مرد سے کہو بولے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں, پھر عورتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. یہ دیکھا گیا بہنوں معاشرے میں آج کل کیسی, مطلب انٹینشنلی دیکھتے, آؤ آؤ دیکھو دولہے کو دیکھنے جا رہے ہیں, شادی ہو رہی, آؤ دولہے کو دیکھے, آؤ دیکھو جھانک جھانک, کس کا دولہا بھائی, جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھنا, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, نعوذ باللہ. بولا میں ایک مرتبہ, تو پہلی مرتبہ جب دیکھی ہے مطلب غور کری اس بات پہ تو مجھے تعجب لگا کہ یہ جا کے دولہے کو کیوں دیکھ رہے ہیں, آؤ آؤ دولہے کو دولہا آیا دیکھو دیکھو, ارے نعوذ باللہ, دولہا کس کا ہے, کون دیکھ رہی, آپ کو ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ دیکھنے کی. ہاں چلتے پھرتے کچھ نظر پڑ گئی, یہ وہ ہے فلاں ہے وہ الگ بات ہے, لیکن انٹینشنلی دیکھنا, نگاہ کو جھکانے کا حکم جو ہے وہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ غیر مرد کو انٹینشنلی نظریں اٹھا اٹھا کے نہیں دیکھنا ہے. اللہ ہم کو ہدایت دے مالک, آمین یا رب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے, یا اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالیں, یعنی اوڑھنی تو سینوں کو ڈھانکتے ہیں اور وہ اوڑھنیوں کا گریبان کہاں آنا چاہیے, اوڑھنی کا کارنر جو آنا چاہیے وہ گریبانوں پر, مطلب یہ کہ گردن اور سر اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں اوڑھنیوں سے. اوڑھنی ڈالنے کا بھی طریقہ ہے دیکھیں قرآن میں, سبحان اللہ. آگے بڑھ پا رہے ہیں کہ اے اپنے آرائش کو ظاہر نہ کریں, اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے کس کے سامنے, اپنے خاوندوں کے سامنے. ہاں ہم زیبائش اختیار کر سکتی ہیں, جو ہم زیورات پہنتی ہیں, جو ہم تیار ہوتے یعنی اپنے بال کو سنوارتی ہیں, اور الحمدللہ یہ تیز بناؤ سوار ہمارا ہم محرم کے سامنے دکھا سکتی ہیں. محرم کون ہے, خاوند کے سامنے, یعنی شوہر ہے یا والد ہے یا سسر ہے یا اپنے بیٹے یا خاوند کے بیٹے, یعنی شوہروں کے بیٹے جو پہلی بیویوں سے ہیں وہ, یا پھر اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے اپنے بھانجے یا اپنے میل جول کی عورتیں یا غلام. اب یہ میل جول کی عورتوں کے سامنے یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے, جو میل جول کی نہیں اجنبی عورت کے سامنے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے. پردہ مطلب یہ سب اپنی زینت کو چھپانا اجنبی عورتوں کے سامنے بھی, اور غلاموں کے اور ایسے نوکر چاکروں کے جو شہوت والے نہیں ہوں, ایسے مرد جو شہوت والے نہیں ہوں ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں, بچوں کے یا پھر یا ایسے بچوں کے سامنے بھی جو عورتوں کے پوشیدہ باندھوں کو نہیں جانتے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے پیر کو زمین پر مار کر مت چلو, جو تمہارے پاس زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے, یعنی جو ہماری کنگن وغیرہ یا پھر جو ہے نا ہمارے پائل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ہم اب زمین پر مار کے نہیں چلیں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ زینت کا اظہار ہوتا ہے, وہ زینت کا اظہار کرنے سے منع کیا گیا. آگے ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو, ہاں جو ہو چکا نا اس سے پہلے وہ ہو چکا, توبہ کر لو اور اللہ تم کو نجات دے گا, تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں उनका निकाह करा दो, इनका निकाह कर दो। कर दो के मतलब क्या है? ला निकाह इल्ला बी वली, वली के बगैर निकाह नहीं होता। लोग बोलते ना निकाह के वली क्या जरूरी, बात निकला ना फितना, औरत के लिए वली की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अल्लाह ताला बोल सकते थे कि जो मर्द और औरत बेनिकाह है उनको चाहिए कि वो निकाह कर ले, नहीं बोले उनका निकाह करा दो, बोले उनका निकाह कर दो। और अपने नेक बख्त गुलाम जो औरतें होती उनको जो है ना उनका भी निकाह करा दो, अगर वो मुफलिस होंगे तो अल्लाह अपने फजल से अमीर बना देगा। अक्सर बोलते ना कि मुफलिस है भी निकाह कैसा करेंगे, नहीं अल्लाह ताला यहाँ पे यानी अल्लाह की लॉजिक कुछ और होती है, हमारे जहन उल्टे चलते, उल्टे हमारे जहन में क्या रहता, आई कमाता इसने कुछ भी कैसे शादी करेंगे, नहीं कुछ भी नहीं है उसको नौकरी कैसे शादी करेंगे, नहीं अल्लाह ताला वरे निकाह करो अल्लाह रिस्क का दरवाजा खोलेगा उसके लिए, अगर मुफलिस होंगे वो तो अल्लाह अपने फजल से अमीर बना देगा। आयत नंबर 32 है, देखिए याद रखिए, रेफरेंस दे सकते हैं आप किसी को इंशाल्लाह। हाँ उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, हाँ ये और बात है कि मतलब बाज लोग किसी और पर बोझ डालते हैं, वो नहीं बल्कि उसका बोझ उसी पर डालें। अल्लाह कुशादगी वाला और इल्म वाला है, और इन लोगों को पाक दामन और पाक दामन रहना चाहिए, लोगों को पाक दामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने का मकदूर नहीं रखते, यानी कुदरत नहीं है निकाह करने की, कोई कसम की मजबूरी है तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो पाक दामन रहें, सब्र करें यहाँ तक कि अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज दे। और तुम्हारे गुलामों में से जो तुम्हें, यानी अभी गुलामों के ताल्लुक से खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अभी वो मामला नहीं है, यहाँ पर आगे आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने साफ रोशन वाजह निशानियां आयतें तुम्हारे लिए नाजिल कर दी, और उन लोगों की कहावतें जो तुमसे पहले गुजर चुकी, और परहेजगारों के लिए ये नसीहत है जो अब की गई, ये पाकिजा माशरे के लिए जो नसीहत। आगे आता है बहनों अल्लाह सुबहान तआला आयत नंबर 35 से 40 तक अल्लाह ने अपने नूर के ताल्लुक से कहा, सुबहान अल्लाह बहुत प्यारी आयतें हैं ये 35 से 40 तक। अल्लाह फरमाता है अल्लाह नूर है आसमान का और जमीन का, उसके नूर की मिसाल एक ताख की है जिसमें चराग हो और चराग शीशे की कंदील में हो और शीशा मिस्ल चमकते हुए रोशन सितारे की तरह हो और चराग एक बाबरकत दरख्त जैतून के तेल से जलाया हुआ हो, जो दरख्त शर्की हो ना मगरबी, करीब है कि खुद वो तेल आप ही रोशनी देने लगे अगरचे इसे आग ना भी छुए। नूरुन अला नूर, नूर पर नूर, ये अल्लाह का नूर है। और अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह अपने नूर की जिसकी तरफ चाहे रहनुमाई करता है। अब अल्लाह ताला बताए मैं सरासर नूर हूं, और नूर की एक लंबी मिसाल दी गई, अब ये नूर को लेके बिदतें करने लगे। बात समझना एक था, अल्लाह की पाकीज को समझना था, और अल्लाह ताला बता रहे हैं मेरी नूर की, यानी मेरी नूर किसको बोलते, लाइट इंग्लिश में आप देखेंगे तो लाइट, अंधेरा रहता लाइट रोशन हुई तो क्या होता, दिखाई देता। तो अल्लाह ताला बता रहे मेरे नूर की तरफ, यहदिल्लाहु बिनूरिही मन यशा, जिसको चाहता है अल्लाह हिदायत देता है अपने नूर की, मतलब अल्लाह ताला गाइडेंस करता है, रहनुमाई करता अपने इल्म के जरिए से वो नूर। अब वो नूर को लेकर नऊज बिल्ला कैसी कैसी बिदतें करने लगे, और नऊज बिल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल दिया अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर में से एक नूर है नऊज बिल्ला। अब वो एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से लिए पता नहीं, ना कुरान से ना हदीस से, कहीं से भी साबित नहीं है ये। तो ये नूर को फसाद नहीं बनाए, ये तो बेहतरीन प्यारी बात है, इसके ताल्लुक से नऊज बिल्ला ऐसी फसादी बातें हमसे नहीं हो, जो पिछला हो चुका हो चुका, हमको भी नहीं मालूम था तो हम भी वैसे ही बोलते थे अच्छा ये ऐसा है, लेकिन नऊज बिल्ला जब कुरान हदीस पढ़े तो पता चला ये नूर कुछ और है। इतना प्यारा लगा जब अल्हम्दुलिल्लाह ये आयतें पढ़े कि अल्लाह है नूरुन अला नूर, बस अल्लाह ही के लिए है वो नूर। फिर अल्लाह ताला बता रही अल्लाह जिसे चाहता अपने बंदे को देता है, रहनुमाई करता है, रहनुमाई यहदी हिदायत देता है, इस नूर से अल्लाह हिदायत देता है, नूर नहीं देता था, नूर से हिदायत देता है, लिनूर ही अपने नूर से हिदायत देता, नूर उठा के नहीं देता था, क्या देता, नूर के जरिए से हिदायत देता लोगों को समझाने के लिए। ये मिसालें अल्लाह बयान फरमा रहा है, अल्लाह हर चीज के हाल से बखूबी वाकिफ है। उन घरों में जिनके अदब एहतराम का और अल्लाह का नाम वहां लिए जाने का हुक्म है, वहां सुबह शाम अल्लाह का तस्बीह बयान करें। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज से जकात देने से गाफिल नहीं करती, उनसे इस दिन से डरते हैं वो लोग जिस दिन बहुत से दिल घबराते होंगे और आंखें उलट पड़ेंगी। सुभान अल्लाह, ये मोमिन के अल्लाह ताला सिफात बता रहे हैं कि जिनको तिजारत खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, कारोबार उनके तिजारत क्या अल्लाह के जिक्र से उनको गाफिल नहीं करते, ऐसे लोग अल्लाह ताला उनको बचा लेगा उस दिन जिस दिन सब डरते होंगे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाया अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रोजियां देता है, और काफिर की मिसाल उस चमकती हुई रेत की जो चट्टियल मैदान हो जिसे प्यासा शख्स दूर से समझता है कि वो पानी है, सराब बोलते हैं ना, धोखा, इन दूर से समझता बंदा पानी है और नजदीक मेहनत करके जाता वहां पे पानी नहीं रहता। तो काफिरों की मिसाल ऐसी दी गई कि वो फुल स्ट्रगल करके आ रहा है और उसके आमाल गारत है, उसके उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना, अल्लाह हमको महफूज रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह बिनियमत ईमान, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ईमान से नवाजा। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रही कि वो कुफर की मिसाल अंधेरों की बता रही, जो गहरे समंदर की तय के तय में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो, फिर ऊपर से बादल छाए हुए हों, अलगर अंधेरियां हैं जो ऊपर तले पे दर पे हैं, जब वो अपना हाथ निकाले तो करीब है कि उसे हाथ भी नहीं दिखाई देगा। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ही अपने नूर से हिदायत ना दे, उसके पास कोई रोशनी नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर। कुफर की मिसाल इससे दी गई, हिदायत की मिसाल अल्लाह ताला बताए कि नूर बता के अल्लाह ताला का बोले कि वो नूर से अल्लाह गाइड करता है बंदे को, और एक जगह बताए ये कुफर की मिसाल दे के बताए कि अंधेरों पे अंधेरे, यानी उतना अंधेरे में भटक रहा है वो काफिर जो अल्लाह के हिदायत को नहीं लेता। आगे आयत नंबर 41 से 45 तक अल्लाह सुब्हान ताला अपनी कारीगरी के नमूने बताते हैं कि कैसे, देखो आसमान और जमीन की मखलूक को देखो, परिंदों को देखो, कैसे ये लोग अपनी अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, और बादल के निकलने। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए, आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला एक बात बताया कि बादल ही से निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है कि गोया अब आंखों की रोशनी चले जाए। ये चमक की मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला, बादलों ही से ये बिजली निकलती है और इसकी चमक से आंखें चौंधिया जाती हैं। तो शायद हो सकता कि जो करंट बनाए थे ना बहनों, पानी से करंट बनता पता है ना आपको, तो शायद ये फार्मूला यहीं से कुरान से लिए होंगे। यहाँ पे बता रहे हैं ना अल्लाह ताला बादल ही से निकलने वाली बिजली, बिजली क्या है, करंट, तो वो यहाँ पर एक मिसाल दी गई। सुभान अल्लाह, आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हर चीज का यानी बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आगे इरशाद होता है, अल्लाह सुभान ताला फरमाते हैं कि देखो कैसे मैंने बादल को बनाया, फिर मेघ बरसता है और उसमें से बिजली निकलती है, रात दिन की तब्दीली। आंखों वालों के लिए तो इसमें बड़ी बड़ी इबरतें हैं, और तमाम के तमाम चलने फिरने वाले जानदारों को अल्लाह ताला ने पानी दिया। बास पेट के बल चलते हैं तो दो पाओ, बास दो पाओं के बल चलते हैं तो कोई चार पाओं के बल चलते हैं। सुभान अल्लाह, ये मेरे रब की कारीगरी है, जो अल्लाह चाहता है करता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला आगे फरमाने की बेशक हमने रोशन और वाज़ह आयतें उतार दी, और अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखाता है। और कहते हैं ये कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और फरमाबरदार हुए, फिर इनमें से एक फिरका इसके बाद फिर फिर जाता है। अल्लाह अकबर। क्या बोल रही कि अल्लाह ताला बंदा बोलता कि मैं ईमान लाया, लेकिन फिर ईमान लाता, थोड़ी देर चलता, फिर पलट जाता। तो अल्लाह ताला बता रही ये जो पलटता है ना फिरका, ये ईमान वाले है ही नहीं, सिर्फ जुबानी दावे कर रहे हैं ईमान के। जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल इनके झगड़े चुका दे, तो इनकी एक जमात मुंह मोड़ने लगती है, इनकी एक जमात मुंह मोड़ने लगती है। हाँ, अगर इन्हें कोई हक हो, अगर इन्हीं का हक हो तो मुती और फरमा बरदार हो जाती है और उसके तरफ चले आती है। क्या इनके दिलों में बीमारी है, क्या पूछ रहे हैं अल्लाह ताला? यानी जब उनके मुताबिक अहकाम नहीं रहते, यानी अल्लाह जब उनसे कहा जाता है कि आओ अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारा झगड़ा चुकाएं, तो हाँ अगर वो उनके हक में होते झगड़ों का फैसला उनके हक में होने लगता, तो आके बोलते हो आप ही छुड़ाइए हमारे झगड़े। अगर उनके हक में नहीं होता तो वो पलट जाते थे। अब ये मिसालें ऐसी ये दौर की भी हैं, इंशाल्लाह मैं कल के दर्स में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त हो चुका, तो इंशाल्लाह मैं कल के दर्स में आपको बताऊंगी कि ये बहुत ही प्यारी आयतें हैं, बहुत ही प्यारी आयतें आगे, जो सुभान अल्लाह आज के माशरे में जो कसरत से हो रहा है गुनाह, वो ताल्लुक से भी अल्लाह ताला ने आगे भी इरशाद फरमाया सूरह नूर। तो चूंकि सलास हो गया, तो सलास पर हम रुकेंगे इंशाल्लाह।